Good afternoon, dear students of MSc class 2nd semester, School of Studies in Microbiology. So, today's topic is DNA sequencing. This topic is from bioinformatics portion, unit 5th. So, what is DNA sequencing? So, the process of determining the order of nucleotides. As you know, DNA is made up of nucleotide. It is a polynucleotide chain. So the process of determining the order of nucleotide, adenine, thymine, cytosine and guanine along the strain is called DNA sequencing. We need to know the order of nucleotide bases in a strand of DNA for sequencing. Yani ki jo particular har ek इंडिविजुअल का एक अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, तो इस सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं. ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज इज इनकोडेड इन द डीएनए ऑफ इट्स जीनोम. हर किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होता है, यानी कि जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके जीनोम में डीएनए में कोड रहती है. सो डीएनए सीक्वेंसिंग इज fundamental to genome analysis and understanding the biological processes in general. तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे. जो डीएनए है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1817 में फ्रेडरिक मिशर ने, और ये 1940 में ये प्रूव हुआ एवरी ने कि जेनेटिक मटेरियल है डीएनए. 1953 में इसका स्ट्रक्चर बताया गया था वॉटसन एंड क्रिक के थ्रू, और 1977 में सेंगर डाइडियोक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड, जो कि एक डीएनए सीक्वेंसिंग की एक मेथड है, इसको डिस्कवर किया गया. और 1977 में ही गिलबर्ट मैक्सिम गिलबर्ट मेथड होती है केमिकल डिग्रेडेशन, बाय केमिकल डिग्रेडेशन ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग की मेथड है इसे डिस्कवर किया गया. तो अभी हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग मेथड्स की. तो टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस लाइक एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, टू मेथड वर यूज्ड. द फर्स्ट वन इज सेंगर डाइडियोक्सी मेथड, और इट इज आल्सो कॉल्ड चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग मेथड. एंड द अनदर वन इज मैक्सिम गिलबर्ट मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल सीक्वेंसिंग मेथड. These two methods are most popular conventional method. Robotics and automated sequencing are based on these methods. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंगर डाइडियोक्सी मेथड की या चेन टर्मिनेशन मेथड की. ये जो मेथड है सेंगर डाइडियोक्सी मेथड, ये PCR बेस्ड मेथड है. इसमें जो DNA रेप्लिकेशन है उसको मॉडिफाइड किया जाता है. उसको मॉडिफाइड करने के लिए हम डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज करते हैं, इसलिए इसे डाइडियोक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं. डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड सब क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस, या तो प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, राइबोस शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. जबकि अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप ना हो, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस, या तो प्यूरिन या पिरिमिडिन और राइबोस शुगर, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. तो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स की सक्सेसिव जो चेन जो होती है, सक्सेसिव यूनिट्स मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाती है, और ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही एज अ डीएनए की तरह काम करता है. इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है. इसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं दो न्यूक्लियोटाइड बैकबोन के बीच में, जिससे दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं. तो डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का काम ये है, इस चेन टर्मिनेशन मेथड का काम ये है कि जो ग्रोइंग चेन है उसमें डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करा देना रेदर देन नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड. अब बात आती है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड और डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस क्या है. तो डाइडियोक्सी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, जो राइबो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग होती है तब जाके दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है वो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होती है फॉस्फेट ग्रुप की, ठीक है। तो डी नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें 3' OH ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट चेन का ये मिलके एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। पर जो डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड है उसमें ये 3' जो OH ग्रुप है ये एब्सेंट रहता है। एब्सेंट रहने के कारण ये जो नेक्स्ट चेन है उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, जिसके कारण जो चेन होती है वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है और रुक जाती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो उसी पे बेस्ड है। अब बात आती है इसकी प्रोसेस की, तो प्रोसेस में सबसे पहले हमें डीएनए लेना है, एक इनफ क्वांटिटी का डीएनए जिसे हमें सीक्वेंस करना है, उस डीएनए का हमें सैंपल लेना है और उसका हमें पीसीआर लगाना है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जब ये होता है इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन, तो जब हम इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं यानी बॉडी की सेल से बाहर जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो हमें पीसीआर में परफॉर्म करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएनए के 4 एलिकोट ले लेते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटे छोटे पेंड्रॉफ्स ट्यूब में, पीसीआर ट्यूब्स में हमने 4 वो डीएनए ले लिए 4 ट्यूब्स में। उसके बाद हम एक पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। पीसीआर यानी डीएनए के एप्लीकेशन के लिए प्राइमर होना जरूरी है, जैसा कि इन विवो होता है। टैग पॉलीमरेज, जैसे हमारी बॉडी में डीएनए पॉलीमरेज होता है। टैम्पलेट होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनटीपीज होने चाहिए, और इसके अंदर हम एडिशनल डीडीएनटीपीज डाल देते हैं। डीडीएनटीपीज में डीडीएटीपी, डीडीजीटीपी, डीडीसीटीपी, डीडीटीटीपी, इसमें यूटीपी नहीं लेते क्योंकि वो आरएनए का कंटेंट होता है। अब हम इन एलिकोड्स में हमने नॉर्मल डीएनटीपीज भी डाले हैं और डीडीएनटीपीज भी डाले हैं, डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद हम इन ट्यूब्स को पीसीआर करने के लिए रख देंगे। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए होंगे, जहाँ पे समझिए कि ए आया है एडिनिन, तो वहाँ पे डीएनटीपीज अगर ए ऐड हुआ है तो हम एक चीज़ हमें ये करना होता है कि जो हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, 4 ट्यूब्स ली हैं, उसमें एक हर किसी ट्यूब में हम डीडीएनटीपीज नहीं डालेंगे। एक ट्यूब में हमने डीडीएटीपी डाला, दूसरी ट्यूब में डीडीजीटीपी डाला, तीसरी ट्यूब में डीडीसीटीपी डाला और चौथी ट्यूब में हमने डीडीटीटीपी डाला, जबकि सारी ट्यूब में हमने डीएनटीपी सारी ट्यूब में डाले, नॉर्मल डीएनटीपी सारी ट्यूब में डाले। तो अब अंदर क्या हो रहा होगा कि जब रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो सपोज कीजिए ए टी सी जी एक सीक्वेंस है डीएनए का, ऐसा एक छोटा 4 उसका सीक्वेंस है। तो जो पहली ट्यूब है जिसके अंदर मैंने डीडीपी डाला, डीडीएटीपी डाला है, वो जो फ्रेगमेंट है ए पर ही रुक जाएगा, मतलब ए पर ही वो चैन रुक जाएगी। अगर सेकेंड ट्यूब है ए टी जी सी जी बोल रहा है मैंने, तो अगर जो नेक्स्ट ट्यूब है वो थाइमिडीन पे ब्लॉक हो जाएगी, थर्ड ट्यूब है वो जी पे ब्लॉक हो जाएगी, मतलब जहाँ पे भी उसके रिस्पेक्टिव डाइडियोक्सी आएंगे वहाँ पे वो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। अब बात आती है इंटरप्रिटेशन की, तो हम रिजल्ट इंटरप्रिटेट करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब हम एंजाइम ऐड कर देते हैं तो प्राइमर एक्सटेंड होता है और डीडीएनटीपीज एनकाउंटर होते हैं, वहाँ वहाँ पे चेन जो होती है वो एंड हो जाती है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर रेशियो लें डीएनटीपीज और डीडीएनटीपीज का, तो चेन पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ जिसका जिसका जैसा जैसा डीएनटीपीज आता है उस पर उसके रिस्पेक्टिव टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है चेन सिंथेसिस और छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। All the terminated chain will end up in the DDNTPs added to the that reaction. फिर अब इसको sequencing ladder के through हम agarose पे चलाते हैं और उसको resolve करते हैं electrophoresis के through. अब हमने क्या किया, जो electrophoresis gel बनाते हैं उसमें 4 columns बनाते हैं। ये जो 4 tube का जो mixture है 1 by 1 एक एक column में हमने introduce करवाया, first वाले में A, next में G, C, T, ऐसे करके पूरा हमने एक एक individual well में individual जो tube है उसका हमने material add कर दिया। अब क्या होता है, सपोज कीजिए कि फर्स्ट एक सीक्वेंस है डीएनए का, वो हमें पता लगाना है ए टी जी टी जी सी टी ए जी सी टी। आप इसको लिख लीजिए, लिखेंगे तो आपको इसको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा मैं जो इसका मैटर है वो आपको पोस्ट करूंगी, उसके थ्रू आप इसको जब टैली करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, तो जो फर्स्ट ट्यूब है जिसमें DDTP डाला है हमने, DDTP थायमिडिन डाला है, तो ये सेकेंड वाले पे रुक जाएगा, है ना। AT है ना, थर्ड पे रुक, टी पे रुक जाएगा। DDATP डाला है तो वो ए पे रुक जाएगा। तो इस तरीके की जो फ्रेगमेंट है उसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस कर लेंगे और उसमें हमने पूरा हम पता लगा लेंगे कि जो सबसे पहले फ्रेगमेंट आया वो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा चारों ट्यूब में से। तो इस तरीके से हम उस फ्रेगमेंट को टैली करते जाएंगे। फर्स्ट मान लीजिए ए आया, यानी पहला लेटर ए था क्योंकि पहली चेन जो थी वो ए पे ही रुक गई। फिर दूसरा टी था क्योंकि वो जो बड़ा लेटर आया ए टी था, तो ए टी यानी दो बेस पे आ, यानी उससे बड़ा फ्रेगमेंट था वो उसके सेकेंड तक पहुंचेगा। यानी फर्स्ट पे जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, यानी सबसे जो शॉर्टेस्ट चेन होगी, यानी कि वो वाला न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे होगा, फिर उससे छोटा सेकंड पे। तो इस तरीके से आप न्यूक्लियोटाइड को टैली करते जाओगे और अपना सीक्वेंस का नंबर लिखते जाओगे। तो इस तरीके से एक पूरे DNA का सीक्वेंस आप चेन टर्मिनेशन मेथड के थ्रू पता लगा सकते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल DDNTPs पे है, डायडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स पे। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की, विच इज मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है। तो मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड सीक्वेंसिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग फर्स्ट टाइम डेवलप बाय एलन मैक्सम एंड वॉल्टर गिलबर्ट इन 1976 to 1977। एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियो बेस स्पेसिफिक पार्शियल केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ DNA एंड सब्सिक्वेंट क्लीवेज ऑफ द DNA बैकबोन एट साइट एडजेसेंट टू द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यानी पर्टिकुलर मॉडिफाई न्यूक्लियोटाइड पे मॉडिफिकेशन करना है और सब्सिक्वेंट क्लीवेज कर देना है उस जो मॉडिफाइड बेस है उसके बगल वाले साइड वाले बेस पे। तो अब बात आती है इसकी प्रोसेस की। तो उसमें सबसे पहले जो DNA का एक सीक्वेंस का एक वो होता है कि 5' to 3', 5' to 3' का सीक्वेंस होता है। तो 5' को सबसे पहले हम उसको लेबल कर लेते हैं, जो DNA का एंड होता है 5' को लेबल कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड में हमने क्या किया, DNA के सैंपल को चार एलिक्वेट में डिफरेंट डिवाइड कर लिया। उसके बाद बेस मॉडिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म की, देन क्लीवेज रिएक्शन परफॉर्म की, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ऑटो रेडियोग्राफी। उसके बाद हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो हमने DNA के 5' को लेबल किया है वो हमने काइनेज रिएक्शन के थ्रू करते हैं। काइनेज मतलब फॉस्फेट ऐड करता है, ऐसा एंजाइम जो फॉस्फेट ऐड करता है। तो वो फॉस्फेट जो हमने P32 वाला फॉस्फेट हमने लिया है, गामा P32 ATP हमने लिया है, उसके थ्रू हमने काइनेज के थ्रू हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया है। तो हमारा 5' वो लेबल हो गया है। सेकेंड स्टेप में DNA फ्रेगमेंट को प्योरीफाई करेंगे। थर्ड स्टेप में हम केमिकल ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि DNA ब्रेक हो जाएगा और फिर इसको जेल पे रन कराएंगे। अब बात आती है केमिकल मॉडिफिकेशन और क्लीवेज की। तो फर्स्ट जो स्टेप था उसमें 5' जो है वो आपका P32 से टैग हो गया। अब 5 से जो थर्ड एंड है उसकी साइड चलेंगे। तो हम जो बेस मॉडिफिकेशन करते हैं वो हम यूज करते हैं डायमिथाइल सल्फेट लेके, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन दो होते हैं, ए और जी, यानी एडिनिन और ग्वानिन। तो अगर हमें बेस मॉडिफिकेशन एडिनिन में ग्वानिन में करना है तो सिर्फ हम DMS का यूज करेंगे, यानी डायमिथाइल सल्फेट का। अगर हमें बेस मॉडिफिकेशन G+A में करना है तो हम DMS+ फॉर्मिक एसिड लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लीवेज ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन की, तो उसके लिए हम पिपेरिडिन लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है बेस मॉडिफिकेशन, हम अगर हम पिरिमिडिन करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रेजिन का। तो पिरिमिडिन में दो बेस पेयर आते हैं, साइटोसिन और थायमिन। जब हमें साइटोसिन प्लस थायमिन का एक पेयर बनाना है तो हम हाइड्रेजिन से ट्रीट करेंगे, और अगर हमें सिर्फ साइटोसिन चाहिए तो हम हाइड्रोजन प्लस NaCl से ट्रीट करेंगे। तो इस तरीके से हम हर एक ट्यूब में अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड को क्लीव करना है, उसके लिए हम पिपेरिडिन यूज़ करते हैं। जब हम चारों ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, कहीं पे जी से ब्रेक हो जाएगी ट्यूब, कहीं पे ए प्लस जी से ट्यूब ब्रेक हो जाएगी, कहीं टी प्लस सी से, कहीं सी से ब्रेक हो जाएगी, और इसको हम जेल में रन कराएंगे। सबसे पहले हम उसको सीक्वेंस करा लेंगे, जेल में रन कराएंगे, और जेल में रन कराने के बाद उसको हम उसी तरीके से, ये फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे छोटे छोटे, जो छठा फ्रेगमेंट होगा वो पहले हो जाएगा, उससे बड़ा फ्रेगमेंट बाद में आएगा, तो इसको हम ट्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेस करके पूरा एक जो सीक्वेंस है डीएनए का वो हम पता लगा लेते हैं, और डीएनए का इस तरीके से डीएनए की सीक्वेंसिंग हो जाती है। तो ये दो मेथड थी डीएनए सीक्वेंसिंग की। मैं इसका मैटर सेंड कर दूंगी, उससे आप उसको टैली कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।